कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्तिथे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाचरणं पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् सदैवास्मि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयम् सङ्कर्षणः कारणतो यशाय गर्भोदशायी सपयोद्धिशायी शेषस्य जस्वरान्त्यानन्दात्करामः शरणम् वो सब कहाँ गया वो पुरंदर आर्गो अरे वो कहाँ गया क्या वो परमेश्वरी नहीं है है फिर दुर्वासा भाग गया परमेश्वरी कहाँ गया बात ही नहीं वृंदावन में झूलन यात्रा समाप्त कर श्री श्री बलदेव प्रभु की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उनके अपराजित लीला चरित्र का गायन किया वर्णन किया। बहुत से वक्ताओं ने बलदेव तत्व के संबंध में अच्छी अच्छी बातें कही और उसका श्रवण हमारे पुंडरीक विद्याजी विधिक निधि ने श्रवण किया खूब मनोनिवेश पूर्वक। इसलिए अंग्रेजी भाषा में वे कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे क्या उन्होंने सुना जल्दी से। अवतार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अवतार हैं, मन्वंतरावतार हैं, युगावतार हैं, लीलावतार हैं, आवेशावतार हैं, गुणावतार हैं, मन्वंतरावतार हैं, जितने अवतार हैं। और कृष्ण की पराशक्ति से प्रकाशित जितने भी वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन और वहाँ के द्रव्य हैं और इस जगत में ब्रह्मांड इत्यादि द्रव्य हैं और शिव शक्ति की विभिन्न अंश अथवा तटस्था शक्ति से प्रकट अनंत जीव दिखते हैं, ये सब अलग अलग हैं या एक हैं, इसको दृष्टि में रखते हुए ये सभी अद्वै ज्ञान परतत्व कृष्ण से संबंधित और उन्हीं के द्वारा प्रकटित हैं। इसलिए कृष्ण को अद्वै ज्ञान परतत्व कहते हैं। किंतु जैसे हमने जितने अवतारों की बात कही बलदेव प्रभु से लेकर और शेष अंतिम जो अवतार हैं कला अर्जुन सततः कृष्ण से अभिन्न और ये स्वांश अवतार स्व अंश कृष्ण के सच्चिदानंद रूप जो काय है उनसे ये प्रकटित हैं, इसलिए इनसे अलग नहीं है, ये इन्हीं के अंतर में है, सत्वतः एक। और पराशक्ति से प्रकाशित वैकुंठ इत्यादि जो जगत हैं, ये भी शक्ति शक्तिमान अभेद अभिन्न होने के कारण, तटस्था शक्ति भी कृष्ण की होने के कारण, उनसे अभिन्न होने के कारण, और ये ब्रह्मांड भी जड़ा शक्ति से अभिन्न उनके द्वारा प्रकाशित होने के कारण वो भी कृष्ण से अभिन्न, अतः तो सभी को मिल करके ये अद्वैय ज्ञान परतत्व ये है। बाकी चीजें कल हम स्पष्ट करेंगे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो श्री बलदेव तत्व के संबंध में क्या वार्ताएं चल रही थी, अब उसका आज समापन है, तो अंतिम समापन किससे होगा? तो ये दामोदर दास ब्रह्मचारी ब्रजवासी जी इसका समापन करें। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरव्रतिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमः भक्त्या विघ्नापराधलक्ष्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा। तो कर दिया था ना, बीच में कहाँ तक बोला था? नद्यस्तदा तदुपधारीय मुकुंद गीत आवर्तलक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन सवित उर्म भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पाद जुगलं कमलोपहारा। सखीरी मुकुंद के वेणु गीत को सुनकर नदियां कामोच्छ्वास से भर जाती हैं। कैसे समझा? आवर्त इसमें आ रहे हैं, उठ रहे हैं, आवर्त उनके इस कामोच्छ्वास को प्रकाश कर रहा है, और इस रूप काम उद्रोग के वशीभूत होकर वे भग्न तरंगा अर्थात उनके तरंगे टूट जाती हैं, और तरंग रूप बाहु समूह के द्वारा कृष्ण को आलिंगन करने के लिए अपने तरंगों रूप बाहु में कमल का उपहार ग्रहण कर उनके चरणों की पूजा करती हैं। ये तो साधारण अर्थ सनातन गोस्वामी जी टीका में बतला रहे हैं। आकाश में बादलों की तो बात अलग रहे, वे तो दौड़ते हैं इधर उधर और पानी की वर्षा भी करते हैं। ये देखो तो नदियां जड़, ये जड़ नदियां अचेतन नदियां, ये अचेतन नदियां नहीं है, अचेतन से दिख पड़ती हैं, वो सखी से कह रही है, अचेतन सी अचेतन के समान वो दिख रही हैं कि सचमुच में वे अचेतन नहीं। ब्रज में कुछ भी अचेतन नहीं है। वहाँ की मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, यहाँ तक कि सूखे हुए तीन, गुल्म, लता, सूखा हुआ भी कुछ हो, हीरे मोती, टूटे हुए फूल जो अपने वृंद से हटा लिए जाते हैं, सभी चेतन। जो कुछ अचेतन सा भी दिखता है कृष्ण के लीला विलास के लिए, कृष्ण को निसंकोच करने के लिए, वे सभी जड़ जैसे, अचेतन जैसे बन जाते हैं, किंतु हैं वो यत्किंचित तृण गुल्मकी इक्षत मुखन गोष्ठे समस्तम वितत सर्वानंद मुकुंद दैतम नीलानु कुलम परम शास्त्रे मुहुर मुहुर निष्टंकितं ज्ञानचा ब्रह्मा देव शक्तिहीन ततो सर्वम मया इदम। सबकी वंदना करते हैं। वहां पर कोई भी चीज अचेतन। भाव भक्त लोग जो कि भावावस्था में पहुंच गए हैं, वही लोग भी इस प्रकट जहां पर लीला हुई थी, अभी भी वहां के सब वस्तुओं को उसी रूप में दर्शन करते हैं। वो लोग भी जड़ उनको दर्श नहीं देते, वो सब कुछ इस जगत में अचेतन ही चेतन जैसे दिख पड़ते हैं। उनको इस जगत में, इस ब्रजभूमि में कोई भी चीज जड़, कृष्ण विरोधी कुछ भी नहीं दिखती। कृष्ण लीला के अनुकूल उनको सब देखते हैं, हम लोग प्रतिकूल सबको देखते हैं, किंतु वो सब अनुकूल के रूप में दर्शन करते हैं। तो भला गोपियों की तो बात ही क्या। तो नद्य सदा तदुपधार्य उपधार्य, उपधार्य माने श्रवण कर, उप अने अत्यंत समीप से धार्य श्रवण करके, अत्यंत निकट से कृष्ण उनके किनारे पर खड़े हैं, उनके कूल पर जहां वो बह रही है किनारे पर एकदम खड़े हुए बजा रहे हैं। उपधार्य नुकुंद को देखा जे आए हमारे शपीत में खड़े होकर के और वेणु में गान कर रहे हैं, सुनकर के मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा। यहां पर नदियों से श्री यमुना, मानस गंगा, सरस्वती और सरोवर, कुंड, ये सबको समझना चाहिए, अथवा इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। मानस गंगा भी हैं और नदियां और सरोवर हैं, किंतु उनमें सर्वश्रेष्ठा कौन है? यमुना जी। यदि कहो जो राधा कुंड श्याम कुंड, वो तो राधा कृष्ण और कुंड के, कृष्ण के ही और राधा जी के स्वरूप हैं, उनको कुंड मत समझो। इसलिए बाकी सब में ये श्रेष्ठ ये यमुना जी। ये यमुना जी विशाखा स्वरूप है, इसलिए कालिंदी अन्यान्य नदियों और सरोवरों से श्रेष्ठ होने के कारण वेणुनाद का ये अधिक रूप में आस्वादन करेंगे। और नदियां जैसे सुनती हैं, वो इतना आकर्षित नहीं हुए जितना कि यमुना जी हैं। जैसे सब सखियां सुनती हैं, ब्रज का स्थावर जंगम सभी कुछ वेणु ध्वनि को सुनता है या सुनती हैं, किंतु सब पर प्रभाव किस पर पड़ता है? जिनका आधार प्रेम का आधार सबसे ऊंचा है, वो श्रीमती राधिका जी का प्रेम का आधार सबसे ऊंचा है, इसलिए अनुभव करती हैं और कृष्ण के की प्रत्येक माधुरी का सर्वश्रेष्ठ रूप में आस्वादन करती हैं। जो जितने जिसका आधार जितना ही प्रेम से प्रेम पूर्ण है, वो उतना ही इन चीजों का आस्वादन करेंगे। तो नदियों में यमुना जी विशाखा हैं, विशाखा कैसी हैं? ललिता के श्रीमती राधिका के वयह माने उम्र, गुण, रूप, अंग का अंग की कांति सब विषयों में राधिका जी के समान ही हैं विशाखा जी। इसलिए ये नदी होने पर भी सबसे अधिक रूप में इस वेणु गीत को श्रवण करती हैं। अथवा मुकुंदेई परम सुखप्रद वेणु नादामृतमय गीत सावधाने कर्ण द्वारा हृदय धारण करिया। मुकुंद के इस वेणुनाद रूप अमृत को हृदय में धारण कर तत्क्षणात् उसी समय में उनके हृदय में काम का उद्रेक हुआ। काम माने गोपियों का काम प्रेम है। साधारण लोगों का काम नरक का द्वार है और गोपियों का काम ये प्रेम है। इसलिए तत्क्षणात् उनके हृदय में काम का प्रवाह जग उठता है और उसी समय में जैसे किसी को किसी के प्रति प्रेम हो तो वो समझ सकता है। अत्यंत आदमी पागल हो उठता है, मत्त हो उठता है, अपने पर अंकुश नहीं रहता। उस समय में उनका वेग, मन का वेग, बोली का वेग, चलने का वेग सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। ये इनका धारा प्रवाह ठीक से आगे बढ़ रहा था। वह प्रेम के आवेग से भग्न तरंगा, उनकी तरंगे भग्न हो गई और वो गोलाकार के रूप में घूमने लगी। उसमें के प्रवाह में यदि कोई पड़ गया तो एकदम नीचे रसातल में वो चला जाएगा, उसका बचना बड़ा भारी मुश्किल है। उसमें हाथी भी यदि पड़ जाए तो उसे घुमा करके नीचे उसको फेंक देता। तो वह आवर्त नहीं है, वह जैसे वो जल का विकार है साधारण रूप में, यह काम का विकार है। उनका काम का विकार के वजह से उनकी गति भग्न हो जाती है, टूट जाती है और लक्ष लक्ष लाखों लाखों तरंगमालाएं उठने लगती हैं। पानी आगे बढ़ नहीं रहा, पानी बढ़ रहा है और ये आवर्त आ रहा है और उसे तरंगे उठ रहे हैं। ये तरंगे हजारों हजारों या लाखों, ये तरंगे नहीं बल्कि यमुना जी की ये बाहें भुजाएं हैं और उसके द्वारा उठ करके कृष्ण जा खड़े हैं उधर में वो बढ़ रही है। किस लिए? कृष्ण का आलिंगन करने के लिए। अथवा मुकुंद गीत की जो लक्ष्मी, आवर्त लक्षित है तो त्वा को हटा दो तो क्या रह गया? लक्ष्मी। लक्ष्मी को लक्ष्मी बना लो, लक्ष्मी अपभ्रंश वो लक्ष्मी है। आवर्त लक्ष्मी अर्थात अवर्त की जो शोभा है ठीक है, बहुत अच्छा देखिए लक्ष्मी है अर्थात जो संपद है तहार आवर्त परस्पर बा तहार द्वारा अभी व्यंजित ये मनोभाव, उसकी लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माने शोभा, संपद, मनोभाव। मनोभाव माने क्या? मन के भाव अथवा यहां पर काम, वो काम की तरंगे भीतर में उठ रही हैं, इसलिए इसमें भी तरंगे उठ रही हैं। इसलिए मनोभाव जो उनके अंदर में है, जैसे जब तक हृदय में कोई भावना नहीं आएगी, शरीर में अष्टसात्विक इत्यादि जो भावें नहीं होंगी, या इस मनुष्य शरीर में ही यदि किसी को क्रोध अत्यंत हो, अत्यंत किसी से प्रीति हो, तो उसका विकार दिखता है, लक्षित होता है। भीतर में कुछ प्रेम नहीं रहने से, प्रीति नहीं रहने से, या क्रोध का उद्रेक नहीं होने से, ऊपर का मुख तम तमाया हुआ, या प्रेम से कुछ प्रेम से प्रस्फुटित हुआ, यह सब कुछ नहीं होगा। जैसा ही भाव रहेगा वैसा ही मुख एक दर्पण है, उस पर उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तहारी भग्न वेग, उसी का ये भग्न वेग है। क्या आवर घूम रहा है, मनोभाव ही। इस प्रकार व्याख्या तत् शब्द का लक्षित पूर्वरो श्लोक वेणु गीतेरो लक्षित सहित संबंध सूचित। फिर कहते हैं इसलिए नदियां अपनी लहरी रूप भुजाओं के द्वारा कृष्ण का आलिंगन करने के लिए वो बढ़ी, पानी उठता गया और कृष्ण किनारे पर खड़े हैं, मानो वो पानी बढ़ता हुआ कृष्ण के वस्त्रक्षल तक गया। किंतु कृष्ण कभी कभी वो भी बाम में भाव धारण करते हैं, वो चुपचाप खड़े रहे, उनमें कोई विकार नहीं हुआ। नहीं हुआ तो जमुना जी के अंदर में, मानो उन नदियों के अंदर में कुछ भय सा उत्पन्न हुआ और वे लज्जित होकर झट पैरों के पर चली आई, पैरों में आकर के पुष्पों की अंजलि उन्होंने दान कर दी। इसलिए दीनता के सहित, अब दीन हो, पहले तो प्रेम में उन्मत्त होकर के उनके वस्त्रक्षल तक पहुंची, और फिर दीनहीन होकर के उनके चरणों में अपने हाथों से, लाखों लाखों हाथों से पुष्प, कमल पुष्प की अंजलि प्रदान करने लग गई, अर्थात पूजा करने लगी। पूजा में, अर्चन में, अर्चन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अर्चन दो प्रकार का पहले होता है, एक होता है, अरे क्या नाम है बतलाओ, एक होता है जपांग और एक होता है भक्ति। जपांग माने अपने कर्मों की सिद्धि के लिए, पूजा पाठ इत्यादि अपने कर्मों की सिद्धि के लिए जो करते हैं वो जपांग अर्चन होता है। जैसे पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के लिए जो पूजा देवताओं की जो करते हैं, वो जो पूजा है वो जपांग है, वो कर्मकांग है। स्मार्ट ब्राह्मण लोग, स्मार्ट व्यक्ति लोग इसकी पूजा करते हैं, वो जपांग है, उनका कोई भी अर्चन शुद्ध नहीं, क्योंकि भगवान के पाने के उद्देश्य से नहीं, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए वो लोग करते हैं। जब वो काम हो गया, नहीं हो गया, इसके बाद में अनुष्ठान समाप्त हो गया, उनसे कोई मतलब नहीं। और भक्ति में नित्य होता है, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कनिष्ठ भक्त भी रहे, कनिष्ठ भक्त भी रहे, वो भगवान की पूजा करते, भगवान को नित्य मान करके और भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए ये लोग करते हैं, इसलिए ये भक्ति का अंग है। इस अर्चन में भी दो प्रकार के अर्चन हैं, एक पंचरात्रि और एक भागवती है। और एक और है इसमें, पंचरात्रि और भागवती दोनों मिला हुआ है। ये तीन प्रकार के अर्चन हैं। जो पंचरात्रिक अर्चन है वो पंचांग और पंचांग से, द्वादश अंगों से, षोडश उपचार से ये किए जाते हैं। भाव कम सामग्रियों के द्वारा उनका अर्चन किया जाता है। कनिष्ठ अधिकारी यही तय करता है, उसमें संबंध कुछ और भाव नहीं होता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी का अर्चन भावपूर्वक, गिरिराज जी का अर्चन करते हैं केवल एक थोड़ा सा पानी, एक कुजा पानी और तुलसी दल या तुलसी मंजरी के द्वारा अर्पित करके करते हैं। कभी नैनों से स्नान कराते हैं, कभी हृदय पर रखते हैं, कभी आंखों की पलकों पर रखते हैं, दिन रात रोते हैं, उनको कभी हृदय में धारण करते हैं ने? और उसके द्वारा अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन करते हुए उसको सेवा करते हैं। इसलिए वो भाव सेवा। और दोनों के बीच में एक और अर्चन है जिसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने या हमारे और आचार्यों ने प्रचलन किया, किंतु प्रभुपाद जी ने शिव विग्रहों की स्थापना करके अर्चन मार्ग का कुछ लिया पंचरात्र का और कुछ भागवतीय का, ये दोनों मध्यम अधिकारी वैष्णवों के लिए ये किए गए, जिसमें अर्चन जैसे कि हमारे ध्यानचंद पद्धति में अर्चन का विषय लिखा और उसको ये अर्चन जो है पंचरात्र का विषय, किंतु इसको जोड़ दिया कैसे, भाव के साथ, भावात्मक लेकर के अर्चन करते हैं। ये दोनों का सम्मिलित रूप है जिसमें हम लोगों के मंदिरों में सर्वत्र होता है, केवल कनिष्ठ मार्ग का ही नहीं है, इसमें मध्यम अधिकारी भी कर सकते हैं, करेंगे वैसा ही, किंतु उनका करना वो प्रधान नहीं होगा, उसमें भाव प्रधान होगा। इसलिए भाव प्रधान में अर्चन श्रील प्रभुपाद जी ने या आचार्यों की अनुगत्य में, आचार्यों के अनुगत्य में ये किया, जैसा जैसा अधिकार है वैसा वैसा करें। हरिभक्ति का जितना विषय है वो गृहस्थ वैष्णवों के लिए है, गृही वैष्णवों के लिए, त्यागी वैष्णवों के लिए नहीं है। हम लोग क्या हैं, हमारे लिए है कि नहीं, हम लोगों के लिए भी, हम लोग अभी सचमुच में अभी क्या है स्थिर करना पड़ेगा। अभी न तो त्यागी ही है न गृहस्थ ही है, बीच में झूले हुए हैं जो हम लोगों के त्यागी हैं। त्यागी माने वह जो गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ इन सब चीजों को कर करके और उसमें निपुण हो चुका है और उसे ऊपर उठ गया है, अब वो है त्यागी। उन लोगों के लिए हरि भक्ति विलास नहीं है। आ रहा है समझ में? जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हरि भक्ति विलास के वर्णनीय जितने भी विषय हैं करीब करीब उनको पूरा कर चुके हैं और उस अधिकार को पार करके उसके ऊपर और भाव मार्ग में मध्यम अधिकारी में प्रवेश कर रहे हैं, वो लोग अब त्यागी। उन त्यागी लोगों के लिए मन वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये सब दमन करने की शिक्षा नहीं है। क्यों? वो पहले कर चुके हैं अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, ये सब भी करने की, क्योंकि ये भी समाप्त हो चुका है। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, ये भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? ये सब ठीक करके पूर्ण करके आए हैं। अब हम लोगों को देखे जी, हम लोग करके आए हैं कि नहीं। यदि करके आए हैं तो त्यागी के हम लोग श्रेणी में हैं, और नहीं तो अभी हम लोग बीच की स्थिति में हैं। गृहस्थ भी नहीं किंतु गृहस्थों जैसा भी अधिकार है। इसलिए हरि भक्ति विलास हम लोगों के लिए भी अभी, किंतु जिस स्थिति में हम लोग पार कर जाएंगे, ऐसे जो त्यागी, जो वैष्णव हैं, मध्यमाधिकारी हैं, उन लोगों के लिए हरि भक्ति विलास नहीं। उन लोगों के लिए विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर, आश्रम, ये जो अभी के हैं, ये सब की कोई भी जरूरत नहीं। वो जा रहेंगे वहीं पर आश्रम, जा रहेंगे वहीं पर उनका भगवान मंदिर हृदय में है, राधा कृष्ण की के जो विलास हैं उनका सब समय चिंतन करते हैं, उनके लिए ये सब की कोई भी जरूरत नहीं। केवल लोग ग्रहण करते हैं इसलिए कि हम लोगों को दिखला करके इधर में ले चलेंगे। इसलिए वहां पर कमल के द्वारा उपहार जो दे रही हैं, कृष्ण का जो अर्चन कर रही हैं, वो अर्चन का तात्पर्य क्या, वो बहुत ऊंचा वाला भाव में तभी लज्जित होकर के कर रही हैं। आलिंगन करना चाहती थी किंतु नहीं कर सकी, कृष्ण ने ग्रहण नहीं किया। जिस तरह से कभी कभी उसमें दुर्लभता और निवारण इत्यादि है, अब इसी रूप में समझे। बस झट वो दोनों पैरों पर बैठ गई घुटने के बल पर, और इस प्रकार से अपने हजारों हाथों से कमल के उपहार। अभी हम लोग कमल नदियों में नहीं देखते हैं जिसमें प्रवाह है, किंतु उस समय यमुना में भी कमल होते थे, सरोवरों में कमल खिलते थे। उन्होंने इसके मिस बहाने मानो कृष्ण के चरण कमलों को अपने हाथों से पकड़कर कमल तो दिया और कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित कर दिया, युगल हृदय धारण कर या हृदय के ऊपर में धारण किया। किंबा सदा आलिंगन के द्वारा उनको उनकी गति अवरुद्ध हो गई। जब कृष्ण का चरण कमल पकड़ती हैं, आलिंगन करती हैं, या उनके चरणों को अपने वस्त्रतल पर रखती हैं यमुना जी, उस समय रखने के वजह से आगे बढ़ना उनका स्तब्ध हो जाता है, उनकी गति रुक जाती है। उसमें मानो वो काम में विवल हो जाती हैं, वो पकड़ी हुई रह ही जाती हैं, कब वो छोड़ती हैं इसका भी नहीं। अथवा विचित्र गति विशिष्ट चंचल चरण युगलों को आलिंगन के द्वारा स्तब्ध कर देती है। तब कृष्ण के चरण कैसे हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, विशेष रूप से रासलीला इत्यादि में या गायों के पीछे भी एक जगह कभी खड़े नहीं हो सकते हैं, कभी गायों के पीछे, कभी शाखाओं के पीछे, कभी इधर कभी उधर, चंचल उनके चरण हैं, नित्य में तो चंचल रहते ही हैं। इसलिए चरण युगलों को, गति विशिष्ट चरणों को आलिंगन के द्वारा स्तब्ध कर देती हैं, जैसे आगे इधर उधर न चल सके। अर्थात स्पर्श सुख के द्वारा सुस्थिर करिया एवं असंख उर्मिमाला रूप भुज द्वारा प्रेम भरे ग्रहण करिया। उस समय कृष्ण के चरणों के स्पर्श से उनको जो सुख होता है उसको स्थायी करने के लिए अपने भुजाओं के द्वारा पकड़ लेती हैं और कमल रूप उपहार के द्वारा चरण युगल की पूजा भी किया करते हैं। ये कमल, कमल क्या है, उनके अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। ये कमल कमल नहीं है बल्कि गोपियों का हृदय है, नदियों का, यह यमुना का हृदय है, वस्त्रतल है। ये अपने उस हृदय रूपी कमल को अपने कामों का निर्वापन करने के लिए, अपने कामों को निर्वापन माने समित करने के लिए, शांत करने के लिए ग्रहण किया करती हैं। जैसे यहां पर कमल, कमलोपहारा, कमल उपहारा, कमलोपहारा, अच्छा कमला उपहारा क्या होगा, एक ही होगा ना कि दो होगा, कमला उपहारा, कमलोपहारा, तो ये कमला शब्द अर्थ लक्ष्मी। अतः अपने अपने हृदय पद्म के द्वारा लक्ष्मी जिनके चरणों की में उपहार प्रदान करती हैं, नदियां भी लक्ष्मी से भी अधिक श्रेष्ठ होकर पूजा या उपहार प्रदान करती हैं, इसलिए लक्ष्मी से भी अधिक ये सौभाग्यवती हैं। जो लक्ष्मी को सौभाग्य नहीं होता ये यमुना जी को प्राप्त होता है। उपहार शब्द से भी कुछ ध्वनि निकलती है, उसका अर्थ यह है उपहार, नदियां श्री मुरारी के मोहन वेणु में को श्रवण कर सहसा अपने पति की तरफ में, समुद्र की तरफ में नहीं जाकर अपना प्रयास छोड़ देती हैं ये, और छोड़ करके क्या करती हैं, अपने पति के तरफ में उनको जाना चाहिए, समुद्र की तरफ में उनकी गति वो बंद करके, वो कृष्ण की बंसी ध्वनि सूट करके मानो नदियां ये लक्ष्मियां लौट आई कृष्ण के निकट में, जैसे गोपियां सुन करके हो आती हैं। और मानो मूर्ति धारण करके मणिमुक्ता इत्यादि दिव्य हार श्री श्रेष्ठ कृष्ण प्रिय ब्रजभूमि से उत्पन्न कमल का उपहार लेकर के मानो कृष्ण के चरणों में उर्मी के आत अपने भजाओं के रूप में, जैसे कोई भी पशु पक्षी की पतंग श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके मुग्ध होकर के कृष्ण के तरफ में आकर्षित हो जाता है, ये नदियां भी आज कृष्ण के इस वंशी ध्वनि को सुन करके अपने पति की तरफ में जाना छोड़कर उनको वंचित करके कृष्ण के समीप में आ गई, और इन्होंने अपने कमल को उपहार के द्वारा उनके चरणों में अपने हृदय को अर्पण कर दिया। अर्थात और नदियों का स्वभाव है अपने पतियों के तरफ में जाना, क्योंकि नदियां जितनी है समुद्र की पत्नी है, इसीलिए वे अपने पति समुद्र के से मिलने के लिए सर्वदा उत्सुक रहती हैं। ये बलदेव जी के रास में यमुना जी जा रहे हैं, वहां पर लिखा गया है सरित पति अतः तो समुद्र के तरफ में जा रहे हैं, बलदेव जी ने उनको खींच लिया। यदि यमुना जी को भी सरित पति कहा जाए, समुद्र की पत्नी कहा जाए, इसमें हर्ज क्या है? है, यदि अभिमन्यु और अभिमन्यु का भाई क्या नाम दुर्मद इत्यादि गोपियों के पति हो सकते हैं, तो उनसे तो अच्छे ये समुद्र हैं, कोई हर्ज नहीं, मान लिया जाए उनसे देखने के लिए लौकी विवाह कर लिया, वो समुद्र की तरफ में नहीं जाए, उनसे कोई प्रीति नहीं रख करके सब समय कृष्ण के तरफ में प्रीति रखने वाली है, इसलिए किसी कोई भी पतु है कोई हर्ज नहीं। जैसे सूर्य की पूजा करती हैं, कोई दुर्गा की पूजा करती हैं, कोई गौरी जी की पूजा करती हैं, यह सब बहाना मात्र है, ऐसे ही उनका ये बहाना मात्र है। इसलिए यदि सरस्वती यदि समुद्र होते भी हैं तो कोई भी हर्ज नहीं, यह सब उनको बहाना बनाने का रास्ता है। इसलिए वे समुद्र की तरफ में अग्रसर नहीं हो करके कृष्ण को चरण के स्पर्श को करने के लिए यह बंसी की ध्वनि से वो उनके हृदय में ऐसा काम उत्पन्न होता है जो लौट करके कृष्ण के चरणों में ही अपने हृदय रूपी कमल को उपहार दे देती हैं। इसलिए ये नदियां धन्य हैं। कौन कह रहे हैं? ये नदियां धन्य हैं, हम लोग नहीं कर सकती, समुद्र वहां से दौड़ करके आकर के इनको दंड नहीं देगा, और हमारे पति यदि ऐसा सुन भी लोगे गंध तो लग जाएगा ही, तो वो हमें दंड देने लग जाएंगे, और हम दुर्भाग्यवशत उनकी वेणु गीत के श्रवण करने के लिए भी अयोग्य हैं, श्रवण करके भी निष्फल, कोई भी फल नहीं, हम जा नहीं सकते कृष्ण के चरणों पर उपहार देने की, तो बात क्या, हम उधर में देख भी नहीं सकते। अर्थात गीत श्रवण के मात्र से मोह दशा उपस्थित होती है। अब अपतियों का नाम देख करके एक और अर्थ कर रहे हैं, नदी उनके वेणु गीत को सुन करके दौड़ करके आ सकती है चरणों में उपहार देगी, और हम उनके गीत को सुनने मात्र से ही मोहग्रस्त होकर के मूर्छित हो जाती हैं, हम उठ करके कृष्ण के चरणों में जा नहीं सकती, उनकी पूजा उपहार नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं, इसलिए कृष्ण की सेवा करने की योग्य नहीं है, और न हमें ऐसा सुयोग है। और पति पुत्र सेवा आदि रूप गृह कर्म में भी विराम नहीं, हम लोगों को पति पुत्र और घर के सेवा के कामों में भी हमें विराम नहीं है, उसे कभी भी सबसे समय लगे रहती है, यमुना जी को दूसरा कोई काम नहीं है, वो रास्ते से कल जाती हैं, लौट आती हैं। देशे सत्सदीय प्रकट भावे भजन भजनोचित वेशभूषा आदि धारण नैपुण्य भी नहीं। अहो हमें तो प्रकट रूप में भजनोचित वेशभूषा धारण करने का निपुणता भी नहीं है, उल्टा सीधा जहां तहां ये सब लेकर के हम लोग जाते हैं, बीच में ही मोहित होकर के गिर पड़ते हैं। ओ हम लोग जैसा दुर्भागा कोई नहीं है, और ऐसा दुर्भाग्य कि उनकी लंबी लंबी भुजाएं और हमारी भुजाएं लंबी नहीं, हम तो घर में बैठी हुई हैं, हमारी भुजाएं भी छोटी छोटी, नदियों की भुजाएं बड़ी बड़ी, वो परम सौभाग्यवती हैं जो कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करने का सुयोग पाते हैं। आज यदि थोड़ा सा भी हमको ऐसा सुयोग होता हमारा जीवन वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावनेभ्यो। आ जाओ भाई कोई।